नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव में मिले प्रचंड बहुमत के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को बधाई दी। कहा, एनडीए गठबंधन केवल चुनावी गठबंधन नहीं बल्कि स्वाभाविक गठबंधन है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड संयुक्त परीक्षा 2025 का परिणाम किया जारी। 79% से अधिक अभ्यर्थी हुए सफल। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने के आदेश पर राजनीतिक विवाद बढ़ा। राजद ने कहा, वरिष्ठ नेता का किया जा रहा है अपमान। और देश भर में आज संविधान दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम पत्र लिखकर नागरिकों से संवैधानिक कर्तव्य के पालन करने का किया आह्वान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिले प्रचंड जीत के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को बधाई दी है। मंत्रिमंडल की आज दिल्ली में हुई बैठक में श्री मोदी ने कहा कि इस बड़े जनादेश का श्रेय एनडीए के स्वाभाविक और प्राकृतिक गठबंधन को जाता है। उन्होंने कहा कि एनडीए का गठबंधन केवल चुनाव का गठबंधन नहीं है बल्कि यह गठबंधन मूल्यों और विचारों का गठबंधन है। राष्ट्र आज संविधान दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि संविधान राष्ट्रीय पहचान की आधारशिला है और ये राष्ट्र को आगे बढ़ाने, औपनिवेशिक मानसिकता के स्थान पर राष्ट्रवादी दृष्टिकोण स्थापित करने का मार्गदर्शक ढांचा है।
सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, मुझे ये देखकर हर्ष होता है कि इन सभी आयामों पर संसद सदस्यों ने संविधान निर्माताओं की परिकल्पनाओं को यथार्थ स्वरूप प्रदान किया है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि संविधान स्वतंत्रता संग्राम में शामिल लाखों देशवासियों के सामूहिक ज्ञान, बलिदान और सपनों का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संविधान के मार्गदर्शन में देश सुशासन और सामाजिक आर्थिक विकास की परिवर्तनकारी यात्रा पर अग्रसर है।
संविधान के मार्गदर्शन में पिछले 7 दशक से अधिक के कालखंड में हमने नीतियों और कानून बनाए और सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्य प्राप्त किए। हमने अपने संविधान के मार्गदर्शन में सुशासन और सामाजिक आर्थिक विकास की एक परिवर्तनकारी यात्रा तय की है। भारत विश्व का सबसे जीवंत और सफल लोकतंत्र माना जाता है।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यगण और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस के अवसर पर देश के नाम पत्र लिखकर 1949 में संविधान को ऐतिहासिक रूप से अंगीकार किए जाने का स्मरण किया है। राष्ट्र की प्रगति में संविधान की स्थायी भूमिका का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि 2015 में सरकार ने इस पवित्र दस्तावेज के सम्मान में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखने और अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत एक विकसित और सशक्त राष्ट्र बनने के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। इधर प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया गया। पटना में नगर विकास और आवास विभाग कार्यालय में आयोजित समारोह के दौरान विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह की अध्यक्षता में अधिकारियों ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया। हमारे जिला संवाददाताओं ने बताया है कि विभिन्न जिलों में संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया गया। अररिया जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जिला जज गुंजन पांडे की अध्यक्षता में न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और कर्मियों ने संविधान की शपथ ली। अन्य स्थानों पर भी संविधान की प्रस्तावना का वाचन और संविधान की शपथ ली गई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का परिणाम आज जारी कर दिया। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने परिणाम जारी करते हुए बताया कि इस वर्ष 79.01% अभ्यर्थी सफल हुए हैं।
इस परीक्षा में कुल 3,23,313 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, जिसमें से कुल 2,55,468 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 79.01% है। जो भी परीक्षार्थी आज उत्तीर्ण हुए हैं, उन सबों को राज्य के सभी डीएलएड संस्थानों में एडमिशन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आगामी 29 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच फॉर्म भरे जाएंगे, जिसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपने चॉइस के अनुसार कॉलेज का चयन कर सकते हैं और इनके द्वारा किए गए चयन के आधार पर राज्य के सभी डीएलएड इंस्टीट्यूशंस में नामांकन किया जाएगा।
डीएलएड परीक्षा का आयोजन दो चरणों में 26 अगस्त से 27 सितंबर तक किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को पटना में 10 सर्कुलर रोड वाला आवास खाली करने के आदेश को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने कहा है कि यह वरिष्ठ नेता को अपमानित करने का प्रयास है।
दो दो एक चीफ मिनिस्टर है, लालू जी एक चीफ मिनिस्टर है, राबड़ी जी एक चीफ मिनिस्टर है, तो आप उसी को कर्णांकित कर देते। जो कर्णांकित आपने किया है हार्डिंग जो, इसका मतलब जो ईयरमार्क शब्द है इसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं लालू जी को राबड़ी जी को उस डेरा से वैकेट करने के लिए, हटाने के लिए। तो ये अपमान है, अपमानित किया जा रहा है जानबूझ करके राजनीति विद्वेष के कारण। जो कुछ करना होगा किया जाएगा, लेकिन डेरा नहीं खाली किया जाएगा।
इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य सरकार में उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि आवास आवंटन को लेकर राजद के नेता निरर्थक बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और महकमा बदलता रहता है और आवास अलग अलग श्रेणियों में आवंटित किए जाते हैं।
राबड़ी जी को जब वो आवास मिला था और उस समय जो उनका स्टेटस था, सरकार और महकमा बदलते रहता है और इसीलिए आवास भी अलग अलग कैटेगरी में लोगों को दिया जाता है। इसीलिए आवास से कभी भी सरकारी आवास से मोह माया नहीं करना चाहिए। और ये जो फैसला हुआ है वो फैसला बहुत सोच कर हुआ है, जिससे कि आगे भी इस तरह के नियम का पालन किया जा सके।
उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में अपराध की छोटी से छोटी घटना पर भी कार्रवाई की जाएगी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि आपराधिक घटनाएं चिंता का विषय हैं और इसे जड़ से समाप्त करने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है।
लगातार नीतीश कुमार जी ने सुशासन दिया, अपराध समाप्त नहीं हो गए, अपराध पर कार्रवाई हो रही और नीतीश जी ने सुशासन दिया। बार बार कह रहे हैं तो ऑर्गेनाइज क्राइम को खत्म किया, आपराधिक घटना हो रही है, चिंता का विषय है और आगे उसको भी ठीक करना है, इस पर सरकार पहल।
राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ ने अपने पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। श्री नाथ शेखपुरा जिले से आते हैं। पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को भेजे पत्र में उन्होंने कहा कि पार्टी के राजनीतिक और संगठनात्मक निर्णयों से वो सहमत नहीं है। गौरतलब है कि कल ही पार्टी अध्यक्ष ने शेखपुरा इकाई को भंग करने की घोषणा की थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने IRCTC होटल घोटाला मामले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की स्थानांतरण याचिका की सुनवाई करते हुए CBI को नोटिस जारी किया है। राबड़ी देवी ने इस मामले की सुनवाई कर रहे जज को बदलने का अनुरोध किया है। मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों को खारिज किया है जिसमें कहा गया है कि श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में नई श्रम संहिता पूरी तरह से सक्षम नहीं है। इन दावों में कहा गया है कि 90% श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं और इन संहिताओं के दायरे से बाहर हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावे फर्जी हैं और न्यूनतम वेतन सभी क्षेत्र के हर कर्मचारी पर लागू होंगे। इकाई ने कहा है कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों के सभी कर्मी सामाजिक सुरक्षा ढांचे के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने लोगों से सही जानकारी के लिए केवल आधिकारिक सूत्रों पर भरोसा करने का आग्रह किया है। राज्य में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास कार्यों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। श्री कुमार ने आज पटना में दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर और शेरपुर दिगवारा गंगा पुल परियोजना के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के कारणों की सीटवार समीक्षा शुरू कर दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज पटना स्थित पार्टी कार्यालय में मगध प्रमंडल के प्रत्याशियों के साथ बैठक कर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। पार्टी सूत्रों ने जानकारी दी है कि दो चरणों में होने वाली समीक्षा बैठक के दौरान हारी हुई 119 सीटों के उम्मीदवारों को बारी बारी से बुलाया गया है। समीक्षा का पहला चरण आज से 30 नवंबर तक और दूसरा चरण 6 से 9 दिसंबर तक चलेगा। पश्चिमी हवा के प्रभाव से राज्य के विभिन्न भागों में न्यूनतम तापमान में औसतन 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जा रही है। इसके कारण ठंड का एहसास बढ़ गया है। मौसम विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान बक्सर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले कुछ दिनों तक तापमान में गिरावट की प्रवृत्ति बनी रहेगी। वहीं राज्य के कई भागों में सुबह और शाम के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने की संभावना है।
अगले दो दिनों के दौरान राज्य के एक या दो स्थानों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है।
नशे के खिलाफ जन जागरूकता के लिए आज नशा मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर प्रभात फेरी, रैली और जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया। मुंगेर के जिलाधिकारी निखिल धनराज निपणीकर ने इस अवसर पर समाहरणालय परिसर से नशा मुक्ति रथ को रवाना किया। ये रथ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को नशे के विरुद्ध जागरूक करेगा। इधर शेखपुरा जिले में शिक्षा विभाग और उत्पाद विभाग के संयुक्त तत्वावधान में स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर नशा मुक्ति का संदेश दिया। वहीं कैमूर में जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग की ओर से जिला मुख्यालय भभुआ में जागरूकता रैली निकाली गई। राज्य सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए सीमा सुरक्षा बल BSF के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के पुत्र इमदाद रजा को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी है। सारण के जिलाधिकारी अमन समीर ने उन्हें आज नियुक्ति पत्र सौंप दिया। मुंगेर जिले के हमजापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुंगेर लखीसराय राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 80 पर एक अनियंत्रित कार एक दुकान में घुस गई। इस हादसे में 3 बच्चों समेत 7 लोग घायल हो गए। नवादा के जिलाधिकारी रवि प्रकाश की अध्यक्षता में मैट्रिक और इंटर की वार्षिक परीक्षा की तैयारियों को लेकर आज बैठक आयोजित की गई। कटिहार जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इधर मुंगेर जिले की स्थानीय अदालत ने पत्नी की हत्या के दोषी पति को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 5,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। रोहतास पुलिस ने नासरीगंज थाना क्षेत्र के बरबीघा में छापेमारी कर 17 युवतियों को मुक्त करा लिया है। वहीं युवतियों से अनैतिक कार्य कराने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव में मिले प्रचंड बहुमत के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को बधाई दी। कहा, एनडीए गठबंधन केवल चुनावी गठबंधन नहीं बल्कि स्वाभाविक गठबंधन है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड संयुक्त परीक्षा 2025 का परिणाम जारी किया। 79% से अधिक अभ्यर्थी हुए सफल। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने के आदेश पर राजनीतिक विवाद बढ़ा। राजद ने कहा, वरिष्ठ नेता का किया जा रहा है अपमान। और देश भर में आज संविधान दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम पत्र लिखकर नागरिकों से संवैधानिक कर्तव्य के पालन करने का किया आह्वान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।